चलिए, पेज नंबर है बुक का 432। वैसे आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपको बुक के साथ ना रखूं, ताकि आप लोग नोट्स लेने में रहें। समटाइम्स ये होता है कि जब आप बुक से भी देखते हैं, मुझे भी सुन रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन फील होती है। ठीक है, तो लिखने पे फोकस कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। चलेंगे हम तस्लीम और रज़ा के अगले स्टेप पे, और आज हम देखेंगे कि इसके दर्जात क्या हैं और उसके हुक्म क्या हैं। अभी तक हमने देखा कि तस्लीम और रज़ा क्या है, कि अल्लाह से राज़ी हो जाना, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश और अल्लाह से राज़ी हो जाना, और ये उन चार बुनियादी चीज़ों में से हैं जिसको ईमान की चोटी कहा जा सकता है, और अफसल तरीन अमल भी है, और जिसको ये दुनिया में मिल गया, ये दुनिया की जन्नत है। दुनिया में भी खुश रहने का राज सिर्फ यही है कि इंसान अल्लाह पे राज़ी हो जाए। आज हम देखेंगे कि इसके मुख्तलिफ स्टेप्स क्या हैं। तो इसकी तीन मुख्तलिफ किस्में होती हैं। पहली बात ये लिख लीजिए कि बंदे के ईमान की कमी और उसकी ज़्यादती के मुताबिक उसमें तस्लीम और रज़ा की कैफियत पैदा होती है। ज़्यादा ईमान होगा तो अल्लाह से ज़्यादा राज़ी होंगे, कम ईमान होगा तो ये चीज़ कम होगी। पहली किस्म को कहते हैं रज़ाए वाजिब, यानी जो कम अज़ कम दर्जा है, जो सब पे वाजिब है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बगैर इस्लाम नहीं है या आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। दूसरी किस्म को कहते हैं रज़ाए मुस्तहब, रिकमेंडेड, यानी उससे ऊपर का दर्जा है। चलो रज़ाए वाजिब पे पहुंच गए हो, अब थोड़ी सी इससे ऊपर की कोशिश करो, यानी आप लिख लें रज़ाए वाजिब लीस्ट हर एक इंसान के लिए लाजिम है, लेकिन रज़ाए मुस्तहब उससे ऊपर का दर्जा है। अल्लाह ने उसको फ़र्ज़ इसलिए नहीं किया कि फिर ना पूरा करने पर लोग गुनाहगार होते। और तीसरी किस्म है जिसको रज़ाए मुहर्रम कहेंगे, यानी हराम, जो बिल्कुल नहीं करनी। और आप देखेंगे तो रज़ाए वाजिब ही असल वो चीज़ है जिसको दीन इस्लाम कहते हैं। आपने अमूमन एक रिवायत सुनी होगी कि कब्र में तीन सवाल पूछे जाएंगे, कब्र के तीन सवाल कह लीजिए। इसी तरह इसको असूल सलासा भी कहते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 6 महीने पहले जब चक्कर लगाया था तो ये कोर्स करवाया था। अगर आपको कहीं मिले तो आप ज़रूर सुनिए, इस्लाम क्या है के नाम पे बुक थी और कब्र के तीन सवालों का जवाब था। तो वहाँ भी तीन सवाल क्या होते हैं। कब्र में पहला सवाल क्या होगा, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, मन रसूलू का, तुम्हारा रसूल कौन है, और माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या। ये तीन चीज़ों को बखुशी कबूल करना, प्लस एक चौथी चीज़ क्या है कि कोई मुश्किल आए, कोई मुसीबत आए, तो उस पे जजा फजा नहीं करना, सब्र करना, ये कहलाती है रज़ाए वाजिब। अपने लफ्ज़ों में नोट कर लीजिए, वाजिब यानी फ़र्ज दर्जे पे जो है वो क्या है कि अल्लाह को बहसियत रब माना जाए और खुश हो, यानी कि मारे बांधे। राज़ी लफ्ज़ में ही खुशी आती है, और इसी तरह दीन इस्लाम को भी दीन माने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ अ रसूल माने। ये चार चीज़ों का मजमुआ कहलाता है रज़ाए वाजिब, ये तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी इसकी मोर डिटेल्स देख लेते हैं। जब एक इंसान इन चारों चीज़ों के अंदर अपने आप को डालता है तो फिर ही असल में उसको समझ में आता है कि अल्लाह मुझसे चाहता क्या है। इसके बगैर ना तो ईमान मुकम्मल होगा और ना इस्लाम पूरा होगा। इसी की बुनियाद पे अमल सालेह की इमारत लगेगी। तो अल्लाह के साथ तस्लीम और रज़ा क्या है, अब इन चारों दर्जों को ज़रा अलग अलग देखते हैं। तो अल्लाह ताला के साथ तस्लीम और रज़ा क्या है कि एक इंसान अल्लाह की अबूदियत का हक अदा करे, यानी उसको अपना माबूद बनाए, उसको अपना इलाह समझे, और इसी तरह अस्म और सिफ़ात यानी अल्लाह ताला के नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स उस पे यकीन रखे। जब एक बंदा अल्लाह वहदहु ला शरीक को एक रब होने के हैसियत से मान जाता है ना, इसी मानने के बाद जो कैफियत पैदा होती है ना, इसको इबादत कहते हैं। इबादत अरबी में क्या होता है, अलखुदू व तदल्लुल, आजजी, इनकसारी, तदल्लुल, खुदू, अल्लाह से रग़बत, अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ नज़रों का लगना। और ज़ाहरी बात है कि जब आपको किसी की हैसियत का यकीन हो जाता है तो फिर आप उसको मान भी जाते हैं। आप इसको अपने और पे सोचिए कि आपके रिश्तेदारों में कोई बहुत अमीर हो तो ख़ानदान क्या थे, लोगों की नज़रें उस पर लग जाती हैं, चलो मुश्किल में काम आएगा, चलो ये बहुत देगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसके पास काफ़ी है। अब जिसको अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आ जाए, अल्लाह ताला की ताकत समझ आ जाए, तो फिर क्या होगा, वो अल्लाह सुबहाना ताला के ऊपर नज़रें लगाएगा और उसको लगेगा कि बेहतर है। और फिर इसके बाद याद रखिए कि जब अल्लाह की ज़ात को हम रब के तौर पर मान लें, अब लफ्ज़ रब पे थोड़ा सा गौर व फिक्र कीजिएगा, रब रब्बा युरब्बी तरबिया, जर्रे को कमाल तक पहुंचाने वाला। अब एक होता है अल्लाह को बसियत अल्लाह मानना, ये तो हम सब मानते हैं, इसको तौहीद अलूहियत कहते हैं, तौहीद रबूबियत होती है रब मानना। अल्लाह सुबहाना ताला को रब मानने का मतलब क्या होता है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत इंसान को नागवार गुजरे, और इबादत में रुकू सजदा क़याम सब कुछ होता है, ये सब कुछ उसी के अंदर आता है। तो एक इंसान फिर ये सोच नहीं सकता कि क्रिश्चियंस की तरह वो स्लीप की पूजा करे, ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे, यहूद की तरह हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा करार दे, या हनूद की तरह वो पत्थर की मूर्तियों के आगे झुके, ये नहीं हो सकता। और ये बंदा कभी शिर्क नहीं कर सकता, बड़ा बड़ा लिख लीजिए, तौहीद रबूबियत के मुनकिर ही कब्र वालों से मांगते हैं। आज कहीं तसव्वुफ के नाम पे, कहीं औलिया परस्ती के नाम पे, कहीं किसी मोहब्बत के बिगड़े हुए जज्बे के नाम पर लोग कब्रों पर जाकर हाथ फैलाते, ज़रूरतें पूरी करवाते, चाहते हैं कि पूरी हों, उन पे तवक्कुल करते, उनका सफ़र करते, और उनका ख्याल है कि ये सब करते हैं। बस कह लीजिए कि इनका तौहीद रबूबियत से दूर तक का वास्ता नहीं है। जिसको अल्लाह के रब होने का यकीन आ जाए, ये कैसे हो सकता है कि वो एक मुर्दे की कब्र पे खड़ा हो? इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है कि वो एक पत्थर की बेजान मूर्ति के सामने खड़ा हो? हालांकि देखिए कि ऐसे ही लोग जो कब्रों पे जाकर वजद में आते, कभी चिल्ले काटते, उनका सबसे ज्यादा बड़ा दावा ये है कि असल तो हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, और तुम लोग तो शायद समझे ही नहीं हो। तो आप कह लीजिए कि वो शख्स कभी किसी के दिल का इलाज कर ही नहीं सकता जिसका दिल शिर्क से खुद ही बीमार हो। तो लिहाजा अल्लाह ने कुरान पाक में बहुत खोल के बयान कर दिया, मसल सूरत अल अनाम 164 में आता है, कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बन, कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा किसी और को मैं रब बना लूं, हालांकि बहुवा रब्बु कुल्ली शयइन, वो हर चीज़ का रब है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि यह रब से मुराद है सैयद और इलाह, यानी ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं अल्लाह को छोड़कर इनको बड़ा बना लूं। और अगर आप देखें ना तो शिर्क दो लफ्ज़ों में समझ आता है, जब कोई आपकी ज़रूरत पूरी ना कर सके फिर आप दूसरे के पास जाएंगे ना कि उससे कोई अपनी हाजत मांगे। जो लोग किसी कब्र पे गए, किसी मज़ार पे गए, किसी भी जगह गए, उन्होंने दिल में इस चीज़ को मान लिया कि नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट एबल टू डू दिस, सारी बातें छोड़ दे, कब्र वाले कौन है कौन है। लोग कहते हैं इस मौजू पे बात करें तो लोग कहते हैं वहाबी हैं, अगर वाकई फिर वहाबी वो होते हैं कि जो कब्र वालों से नहीं मांगते, तो दुनिया का हर मुसलमान वहाबी है, क्योंकि वाल वहाब से मांगता है। अल्लाह ताला से मांगने वाला कभी किसी जिंदा से नहीं मांगता, कहाँ वो मुर्दा से मांगेगा। अकल की किसी खिड़की में ये बात फिट नहीं होती कि इंसान वहां पहुंच जाए। सूरत अल अनाम आयत 14 में भी यही बात है, कुल अगैर अल्लाह यत्तखिज़ वलीयन फातिरिस समावाती वलर, कि अल्लाह के सिवा किसी और को अपना वली बना लूँ जो कि आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है। तो गोया के फिर आप कह लीजिए कि माबूद मसजूद मुआइन मददगार हिमायती मुआवन मलजा मावा सब मेरा रब है, सब कुछ मेरे लिए रब है। और जब एक इंसान अल्लाह के लिए खालिस हो जाता है ना, तो इसके कुछ मज़ाहिर होते हैं। मज़ाहिर किसको कहते हैं? जिससे पता चलता है। सात सिफात आप देखेंगे अपने अंदर अगर आप वाकई अल्लाह के रब होने पर राजी हैं। पहली क्या होती है कि अल्लाह की खातिर पे मोहब्बत होती है, और अल्लाह ही की खातिर आप दुश्मनी मोल लेते हैं। कोई मिसाल जहन में रखी हज़रत अबू बकर और उनके बेटे की। हज़रत उमर ने अब गज़वे बदर में अपने सगे मामू को कत्ल किया था, क्योंकि मामू कुफर की तरफ आए थे। तो ये पहली शर्त है, आप अपने अंदर में अपने अंदर ढूंढें, क्या मेरे अंदर तौहीद रबूबियत का रंग घुल गया? सब लोग नोट्स ले रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या है? तौहीद रबूबियत का असर कि दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए हो जाती है। दूसरी इसकी निशानी क्या होती है? कि वह दीन वालों से मोहब्बत हो जाती है, उलमाए दीन से, जो दीन का इल्म रखते हैं। देखिए उलमा और लफ्ज़ हैं और आबिद और लफ्ज़ हैं। उलमा वो होते हैं जो इल्म की बुनियाद पर बात करते हैं। फिर तीसरी इसकी निशानी कि जाहिदों से, जाहिद कौन होता है? जिसमें जुहद हो, दुनिया की चीज़ों से हत्तुल बस अपने आप को दूर रखने वाले। फिर चौथी चीज़ आबिदों से, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार हैं, नफिल निबादतें करने वाले हैं, नमाजें पढ़ने वाले, और इसी तरह उम्रे करने वाले, हज के लिए जाने वाले, इनसे मोहब्बत होती है। और इसी तरह फिर सालेहीन, नेक लोग, सालेह जो अच्छे लोग होते हैं, जो डिसेंट लोग होते हैं, और फिर मुत्तकीन, तकवा वालों से मोहब्बत होती है। और सातवीं इसकी अलामत है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी दीन का काम करने वाले, तबलीग करने वाले, दावा का फरीजा अंजाम देने वालों से इंसान फिर अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है। चलिए 3 सेकंड सोचिए, हैं ये अलामतें मेरे अंदर? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से राजी होने की एक आपके अंदर अलामत है, या सातों हैं बेहतर होगा। इसी तरह इसका ऑपोजिट भी होता है। जब एक इंसान, जब उसको अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलती है ना, तो फिर उसको फासिक और फाजिर लोगों से बुगस होता है। मसलन फिल्मी एक्टर्स हैं, वक्त ज़ाया करने वाले, खेल बनाने वाले, हीरोइनें हैं, गाने बजाने, नस्लों को बर्बाद करने वाले लोग, न्यूडिटी फैलाने वाले, ब्लूप्रिंट्स बनाने वाले, ऐसे लोगों से उस इंसान को नफरत होती है। चलिए, हम सब के लिए अब सोचने के लिए बहुत नुक्ते हैं। अपने आप को चेक कर लीजिएगा, क्या मैं किसी कब्र पे तो नहीं खड़ी होती, पुकारती तो नहीं किसी को, या गौस किसी और को तो नहीं कहती अल्लाह के सिवा, या मुश्किल कुशा, या दस्तगीर मेरी कश्ती पार लगा दे, या फला ख्वाजा दस्तगीर। इतनी शिरकियाँ नातें और इतनी शिरकियाँ कवालियाँ, अल्लाह की बना, तेरे नाम से मेरी बनी हुई है, और क्या कुछ अल्लाह ताला माफ़ करे कि लोग जहालत की बुनियाद पे सुनते हैं, सिर्फ ट्यून्स की वजह से, टोन ही टोन, और जो मिलता है ख्वाजा के दर पे जाके मिलता है। क्या ये लोग तौहीद का मज़ा चख चुके हैं? ये तो ऐसे ही है कि फिर आपको अल्लाह से तो पसंद नहीं आया और आपने इंसानों से मांगना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ पे आते हैं, इस्लाम। इस्लाम को बहसियत दीन मानना, इससे क्या मुराद है, इससे कैसे आप राज़ी होते हैं? तो पहली बात ये कि इंसान इस्लाम के तमाम अहकाम को माने। अल्लाह के दीन को, इस्लाम को कबूल करना, इसका मतलब ये क्या है, अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया बगैर किसी चूचरा के, इधर देखो ना उधर देखो, ये करो ना वो करो, उसको माने। फिर इसकी दूसरी अलामत क्या होती है, जिन कामों से शरीयत ने रोका है आप उनको खामोशी से, दिल की खुशी से करें। फिर अगली बात, जिसको हराम कहा उसको आप भी हराम कहें, जिसको वाजिब करार दिया आप उसको वाजिब कहें, यानी बिल्कुल फुट स्टेप के ऊपर चलिए इस्लाम के। सूरत अलनाम 114 में ये बात है, अफ़ग़ैर अल्लाह यब्तगी हकमा वहुवल्लज़ी अंज़ल इलैकुमुल किताबा मुफस्सला, तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और मुनसिफ तलाश करूं, हालांकि इसी ने तुम्हारी तरफ ये किताब नाजिल कर दी। तो सिंपल सी बात है कि ये अलामत आ जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसकी स्टेज क्या होती है कि जब एक इंसान अल्लाह ताला की तरफ चल पड़ता है, तो उसको फिर अल्लाह और उसका रसूल हर बात के बीच में हकम दिखता है। हकम क्या होता है, फैसले करने वाला, डिसीजन मेकर। किसकी मानो, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, किसकी मानूं, खानदान कुछ कहता है, बिरादरी कुछ कहती है, तो वो बंदा कहता है कि जो बात किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के अंदर आ जाएगी मैं उसको मान लूंगा। फिर जब एक इंसान इस्लाम को बहसियत दीन कबूल कर लेता है ना, उससे राजी होता है, तो फिर उसको अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना पड़े, ज़कात देनी पड़े, या फिर जिना से बचना पड़े, सूद से बचना पड़े, हर हराम चीज़ से वो इसी तरह बचता है जैसे हो सकता है कोई बिजली के तार से बचने की कोशिश करता है। और याद रखिए, दीन इस्लाम से अदम रजामंदी का नाम ही कुफर है। आप इस्लाम से राज़ी नहीं होते, आप कहते मैं नहीं राज़ी, तो फिर मान लीजिए कि आप कुफर पर राज़ी हैं, या हेयर या देर, या आप उनके साथ हैं या हमारे साथ हैं, या आप इधर हैं या उधर हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दो कश्तियों में रहे। तो लिहाजा फिर कुफर की बुनियाद पर इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। सूरत मोहम्मद आयत 28 में आता है, वज़ालिका बिअन्नहुम इत्तबऊ मा अस्खतल्लाहु वकरिहू रिदवानहु फअख्बत अमालहुम, ये इसलिए कि उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जिसने अल्लाह को नाराज़ कर दिया और उसकी खुशनुदी को बुरा जाना, तो उसने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। ज़रा इमेजिन तो कीजिए, कौन सी चीज़ है जो हमें इस्लाम की अच्छी नहीं लगती और उसकी वजह से हम इस्लाम से भी निकल जाते हैं। मसलन आप देखिए, सबसे पहले कोई कहता है मुझे एक अल्लाह से मांगना नहीं अच्छा लगता, भाई हम नहीं आते आपके पास, आप ये क्यों कहते हैं कि कब्र वालों से नहीं मांगते, तो बिल्कुल ना आइए फिर। अच्छी बात है। फिर आपने हमें अगर इस बात पे छोड़ा है ना कि हम आपको ये कह रहे हैं कि हाँ हम पूरे यकीन से आपको कहते हैं कि आप किसी कब्र पे जाके वहां से कोई मदद नहीं मांग सकते, तो फिर वाकई आपको पूरा हक है आप डिक्लेयर करें ताकि क़यामत के दिन हम कह सकें कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी तरफ बुलाते थे इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा। और आप देखिए कि मक्का वालों को भी तो यही प्रॉब्लम था ना नबी सल्लम से, कहते थे हम तेरे खुदा को मानते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन तो हमारे बुतों को भी मान, कभी तो उनकी मान कभी हम उनकी माने। और बुतों से वो ये तो नहीं कहते थे कि ये देते हैं, कहते थे ये बुत अल्लाह से लेकर देते हैं, हमारी इनके आगे इनकी रब के आगे ये हमारा वसीला है। मिसालें क्या देते हैं कि देखो बादशाह के पास जाने के लिए दरबारियों की जरूरत होती है ना, तो भाई हमें भी तो फिर अल्लाह के पास जाने के लिए नेक लोगों की जरूरत है। नौसुबिल्ला, इतना बड़ा अल्लाह ताला के साथ अपने तमसील जोड़ दी दूसरे लोगों की। फिर इसी तरह लोग कहते हैं छत पे जाते हैं तो सीढ़ी की जरूरत होती है ना, तो ये लोग हमारी सीढ़ी हैं। हम क्या कहते हैं, नहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी शाहरग से करीब हूँ। एक माँ अपने बच्चे को जब बुलाती है तो क्या बच्चा माँ से बात करने के लिए बीच में चार आंटियों को डालेगा कि चलो ये आंटियाँ सीढ़ी बन जाए मेरी माँ तक मेरी बात पहुँचा दें? अक्ल को नहीं बात लगती। जो माँ को आप खुद कह सकते हैं वो दूसरे को कैसे कह सकते हैं? बीवी शौहर को जो बात कह सकती है वो दूसरे को कैसे कह सकती है? तो ये बीच के सांप के लाह के हटा कर एक अल्लाह को पुकारना, ये है दीन इस्लाम पर राजी होना। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब एक इंसान अल्लाह पर राजी हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह के दिए हुए सब हुक्म प्यारे लगते हैं, शरीयत की सारी पाबंदियां उसको तहफ्फुज़ लगती हैं, कैद नहीं लगती। समझिए, एक चीज़ है कोई कहता है मैं कैद में हूँ, और एक है वो कहता है नहीं मैं सिक्योर्ड हूँ। मिसाल है कि एक मर्द है वो बीवी को कहता है कि तुम घर में रहना, मेरे आने तक बाहर ना जाना, मैं आऊँगा तो फिर चलेंगे। दो किस्म की औरतें अक्ल के एतबार से, एक कहेगी मेरे शोहर को मेरा कितना ख्याल है, बाहर गई तो हो सकता है रास्ता भूल जाऊँ, चोर आ जाए, कुछ भी हो, मेरा हादसा हो जाए, तो मेरे शोहर ने मुझे सिक्योरिटी दी, मैं सिक्योर हूँ अपने घर में। और दूसरी कहती हाँ कैद दे दी, मुझे कैदी बना दिया, क्यों मेरे पे एतबार नहीं, मैं निकल नहीं सकती। फर्क किस बात का? पहली औरत ने खुद को कीमती समझा, समझिएगा, जब हम खुद को कीमती समझते हैं ना तो इस्लाम की लगाई हुई पाबंदियां उसको अपने लिए एक डिफेंसिव थिंग लगती है। हम हीरे हैं, हम डायमंड, इसलिए अल्लाह ने हमें इतनी पाबंदियों में डाला। और जो औरतें खुद को मुजरिम समझती हैं वो घर को या अल्लाह की शरीयत को कैद समझती हैं। बस इतनी सी बात है, जितना दिल की खुशी से अल्लाह के हुक्मों को मानते जाएंगे उतना इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा लगेगा। अब जो लोग इसको नहीं मानते ना, फिर उनका हल क्या होता है? वो फिर बेकार किस्म की बातें करते हैं। कानून देखिए तो गैरों का, कहीं वो फ्रेंच कानून को देखेंगे तो कहीं इंग्लिश कानून को देखेंगे, कहीं इटालियन को, लेकिन जहाँ अल्लाह का दीन आएगा तो वो भूल जाते हैं इस बात को कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। सूरत अल अनाम आयत 57 में आता है कि हुक्म किसी का भी नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। तो हम सब के लिए ये बात काबिले गौर है, हम चेक करें। अब जब एक बंदा अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता है, इस्लाम को मानता है ना, तो दो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आपको ज़रूर दिखेंगी। पहली क्या है? शरई अहकामात और कवानीन की कानून साजी, और इनको नाफिज करने का हक अल्लाह वहदहु ला शरीक के सिवा किसी को नहीं है। सीधी सी बात है, कोई मेरी ज़िंदगी के कानून नहीं बना सकता, और ना किसी को दखल अंदाजी की ज़रूरत है, कोई इजाज़त भी नहीं ले सकता इस बात की कि मेरे और मेरे रब की बनाई हुई शरीयत के बीच में आ जाए। ये पहली चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिए कि दीन इस्लाम से रजामंदी में जब एक इंसान अपने आप को पाता है, जब इसको अपनी ज़िंदगी में ले आता है ना, तो मुसलमानों से दोस्ती और कुफार से दुश्मनी आती है। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे ना, तो याद रखिए आपकी मोहब्बतों के किबले बदलेंगे और नफ़रतों के किबले बदलेंगे। इसीलिए एक मारूफ टर्म है अलविला वलबरा। विला कहते हैं विलायत को, मोहब्बत, औलिया का लफ्ज़ भी इसी से, और बरा के है बरात से, बरात मिन अल्लाही, सूरह तौबा में आता है। दोनों चीज़ों से ही पता चलता है कि आप इस्लाम से राजी हैं कि नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में फिर दोहरा देती हूँ कि जब आप इस्लाम से दीन के तौर पे राजी होंगे ना, तो आपको मुसलमान अच्छे लगेंगे। इस्लाम से मोहब्बत मुसलमानों से मोहब्बत का रास्ता खोलती है, फिर ताल्लुक इस्लाम पे जुड़ते हैं, फिर इंसान इस्लाम की बात करता है, और फिर कुफर ना चाहते हुए भी बुरा लगता है। फिर बंदा हलाल और हराम नहीं पूछता कि अच्छा मुशरिक औरत से शादी हो सकती है कि नहीं, काफिर औरत है क्यों नहीं हो सकती, अच्छा अहले किताब है तो उससे क्यों थी। वो मोहब्बत की वजह से देखेगा। एक औरत जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ती, जो बुत के आगे बैठती है, क्या मैं उससे मोहब्बत कर सकता हूँ? यकीन करें, मैं आपको दिल की बात बताती हूँ कि जब टीन एज होती है ना, तो बहुत सारे लोग इंडियन मूवीज के शौकीन हो जाते हैं हमारे कल्चर में, और फिर जब आप जिन चीज़ों को देखेंगे आपको उन्हीं से मोहब्बत होगी। फिल्में देखेंगे तो एक्टर अच्छे लगेंगे, क्रिकेट देखेंगे तो क्रिकेटर्स अच्छे लगेंगे, दीन की बात सुनेंगे तो कोई दीन वाला आपको अच्छा लगने लगेगा। जब मैंने पहली दफ़ा समझ के तौहीद का मौजू पढ़ा तो मैं सोचती थी, मेरे जहन में कुछ नाम आते थे, मैं कहती थी कॉलेज में लड़कियां फुलां का नाम लेके कहती थी, हाय डैशिंग, हाय फुलां, वो इंडियन अदाकार। उन्होंने कभी नहीं सोचा ये कब्र के आगे सजदा करता है, ये उसके आगे झुकता है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान लड़की एक काफिर लड़के को हीरो और आइडियल बना ले, जबकि उसके दिल में अल्लाह और उसकी मोहब्बत हो और उसको तौहीद और शिर्क का फर्क पता हो? अगर माँ बाप पैदा होने से लेकर टीन एज तक पहुंचने तक अपने बच्चों को तौहीद रबूबियत सिखा चुके हो और इस्लाम की खूबसूरती सिखा चुके हो, कभी किसी नॉन मुस्लिम को वो आइडियल नहीं बनाएंगे, ये मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ। घिन आएगी, स्मेल आएगी, आपको शिरकी बू आएगी, नकाहत होगी, चेहरे पे पिलाहट होगी, वो फिर हुसन नहीं होता जो आपको स्क्रीनों पे दिखता है, क्योंकि अकीदे की गंदगी जो होती है ना, वो जाहरी गंदगी से ज्यादा बुरी होती है। किसी के हाथ पे कोई गंदी चीज लगी हुई है वो भी बुरी लगती है आपको, लेकिन जो अकीदे की बू आती है वो तो उससे बहुत ज्यादा होती है। तो लिहाजा जब एक इंसान इस्लाम पर राजी हो जाता है ना, तो फिर वो अल्लाह की रजा के नाम पर हर वो काम करेगा जो अल्लाह को अच्छा लगता है, और इस्लाम की बुनियाद पर रजामंदी और खुशी का इजहार करेगा। और याद रखिए, जब दीन इस्लाम से आप दूर होते हैं, अब इसका ऑपोजिट देख लीजिए, आप नहीं राजी इस्लाम से, आप कहते हैं नहीं इस्लाम नहीं, कुछ और चाहिए था, हम तो कोई और दीन चाहते, तो सबसे पहले जो इसका असर आपकी तबीयत पे आएगा ना, अहले कुफर के हाल अहवाल आपके हाल बन जाएंगे, तरीके कुफार के, रस्में उनकी, मज़ाहिर उनके अच्छे लगते हैं, गंदी आदतें उनकी, यानी आप शादियों में उनकी रस्में अपनाएंगे। देखिए, मैं इस वक्त उस मौजू पे नहीं जाना चाह रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आज हमारी सोसाइटी में कमी किस चीज़ की है। शायद ही कोई मुस्लिम वेडिंग पूरी होती हो जिसमें 4-6 हिंदुआना रस्में ना चलती हों, ठीक है? अब वो जो करते हैं वो करें, नो प्रॉब्लम, हिंदू है उसको करने दीजिए, उसकी वो रस्म है, वो राखी बंधन बांधे, अपनी बहन को राखी बांधे कोई हर्ज नहीं, भाई को बांधे कोई हर्ज नहीं, वो होली खेले कोई हर्ज नहीं, वो आग के गिर्द फेरे लगाएं कोई हर्ज नहीं, हम उन पे बुराई नहीं कह रहे, हम मुसलमान पे लेते हैं। जब तौहीद हो, रदीतु बिल्लाहि रब्बन हो और बिल इस्लाम ही दीना हो, तो क्या शादियों में आप फिर उनकी तरह पीले जोड़े पहन सकते हैं? फिर आप उनकी तरह से माइयां कर सकते हैं? आप उनकी तकलीद में देवर को घुटने पे बिठा सकते हैं और बहनोई का पाँव बांध सकते हैं और घर दामाद की जूती छुपा सकते हैं, फिर साली को आधे घरवाली कह सकते हैं? ये तो 4-6 छोटे छोटे लफ्ज हैं जो मेरा ख्याल है हमारे हर कल्चर में आते हैं। वजह क्या है कि हमें नफरत नहीं है, काफिर से नहीं, कुफर से नफरत नहीं है, काफिर से नहीं, कुफर से नफरत नहीं है। याद रखिए, ये कभी नहीं हो सकता है एक मुसलमान अपने दिल में सच्चा ईमान रखे और उसको ये चीज़ें अच्छी ना लगें। फिर आप देखिए कि औरतों मर्दों का मिक्सअप होना, बंदा अक्ल को सीधा रख दे ना, किसी से ना पूछे, किसी को ना बताए, इस्लाम का मिजाज उसको बताए कि औरतें अलग मर्द अलग। अब आज के दौर में इसको आप कोई नाम दे दें, लेकिन उसकी फितरत बताएगी कि मन रदीतु बिल्लाहि रब्बन के बाद फिर इस्लाम ही दीना, और इस्लाम ने तो इतनी सख्ती की। अल्लाह के नबी सल्लम ने एक मौके पे देखा कि मस्जिद में से लोग नमाज पढ़ के जब निकले तो मर्द थोड़ी सी बातें करने लग जाते हैं खड़े होके, तो औरतें और मर्द इकट्ठे ही बाजार में से गुजरने लग गए। तो अगले ही दिन आपने हुक्म दिया, फरमाया कि तुम मस्जिद में से नमाज के फौरन बाद नहीं निकलो, औरतों से कहा कि आप पहले निकल जाइए, जब औरतें अब उस रास्ते से हट के इधर साइडों पे चली देंगी तो कहा मर्दों फिर तुम आओ, रास्तों में खड़े ना हो, बात ना करो। कितना आसान है, मैं इस जुमले को बोल रही हूँ तो मुझे कुरान की वायद याद आ रही कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ लोगों इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। और इसी तरह सूरत मायदा की आयत याद आ रही है कि रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब आपको यकीन हो जाता है ना कि अल्लाह ने इस्लाम के अंदर जो चीज़ें रखी हैं वो सरासर मेरे फायदे की हैं और अल्लाह की ये चॉइस है, तो फिर आपका दिल खुलता है, फिर वाकई इस तस्लीम और रजा अंदर आती है कि मेरे अल्लाह ने कोई चीज़ अगर फ़र्ज़ की है तो वो ठीक ही होगी, और हराम की है तो वो ठीक ही होगी, मुझे इसमें इधर उधर नहीं आना पड़ता। फिर उनको इधर उधर से इम्पोर्ट करके चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं होती कि हम अपने इस्लाम के अंदर कुछ और चीज़ों को भी ले आएं। फिर इसी तरह आप देखिए कुछ निज़ाम आपको आज के दौर में दिखते हैं, जमहूरियत है जिसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, ये सब निज़ाम भी नहीं चलते उस बंदे के अंदर जो रदीतु बिल इस्लाम ही दीना हो जाता है। तो आपने देखा कितना गहरा असर होता है शख्सियत पे।